हरी वो।
आज उतनी ठंडी नहीं है तो भी आप आए हो। अभी तो आप आते ही रहते हो, परसों भी आओगे। दिस रिक्वायर्ड जी, आवश्यकता है थोड़ा बेटा, आवश्यकता नहीं है जीते हो, खाली ठोक सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद का संवाद हम लोग सुन रहे हैं। ये आज का छठवा सत्र है। गोपी प्रेम के वैशिष्ट्य का वर्णन आज के संवाद का विषय है। प्रभु कहे जानी लो कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनिते चाहिए दुहार विलास महत्व। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रभु कहे, ये प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और वे राय रामानंद जी से कहते हैं, हां हां राधा कृष्ण तत्व को तो मैं अभी समझा हूं आपसे, किंतु अब कुछ सुनीते चाहिए, सुनना चाहता हूं। दुहार विलास महत्व, दोनों का विलास महत्व या दोनों का प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम, कृष्ण गोपी प्रेम और उसकी विशेषता वैशिष्ट्य। यह दोनों कैसे उनके प्रेम के व्यापार चलते हैं, आदान प्रदान या व्यवहार होता है, कितना दिव्य विषय है। अलौकिक तो हम लोग आसानी से कह ही सकते हैं, क्योंकि इस प्रेम व्यापार में लौकिकता का गंध भी नहीं है, रंच मात्र भी। भौतिकता लौकिकता या काम वासना नहीं है, प्रातः स्मरणीय, प्रातः काल में जिस विषय का स्मरण करना चाहिए या स्मरण करने योग्य ही ये विषय है। राय कहे कृष्ण हय धीर ललिता, निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरिता। राय रामानंद कहते हैं कृष्ण तो है धीर ललित, निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित, उनका चरित्र ही उनका जीवन ही है, निरंतर काम क्रीड़ा करना। यह काम क्रीड़ा को हमें क्या समझना चाहिए, ये प्रेम क्रीड़ा है, कहा है काम क्रीड़ा, किंतु है ये प्रेम क्रीड़ा। ऐसी क्रीड़ाओं में ही इसमें एक रास क्रीड़ा है, रास लीला है, इसमें निरंतर निमग्न रहते हैं ये राधा कृष्ण, ये गोपी कृष्ण। अब जब कृष्ण है धीर ललित, कहा ना कृष्ण कैसे है, धीर ललित है, है कि नहीं? तो धीर ललित की परिभाषा वे यहां समझा रहे हैं, लिख लीजिए। विदग्धो नमतारुण्यः परिहास विशारदः निश्चिंतो धीर ललितः स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः। धीर ललित वह व्यक्ति कहलाता है, वैसे धीर ललित तो भगवान को ही ऐसी उपमा या ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये धीर ललित है कैसे, विदग्धो चालाक है, कैसे धीर ललित मतलब चालाक। नवतारुण्य और सदैव तरुण जो होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, बुढ़ा मिल गया बुढ़े का काम नहीं है ये प्रेम व्यापार। नवतारुण्य परिहास विशारद, हास परिहास में विशारद पटु कुशल, जो हास परिहास ही नहीं जाने वो कैसा धीर ललित, वो धीर ललित नहीं कहलाएगा। निश्चिंतो धीर ललितः, निश्चिंत कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त। और स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः, जो सदैव प्रेयसी को अपने वश में रखता है, वो जैसे चाहे वैसे ही प्रेयसी को नचाता है, चलाता है उसकी चाल को, उसको नियंत्रित करता है। ऐसा प्रिय प्रियकर धीर ललित कहलाता है। रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। तो युवक है, किशोर वयस किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था की सफलता उसका साफल्य किसमें है? रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे, रात और दिन वो क्या करते हैं, कुंज में निकुंज में विराजो घनश्याम राधे राधे। तो रात और दिन क्रीड़ा करते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं, माधुर्य लीला, और करते ही क्रीड़ा किसके साथ, राधा संगे, राधा के साथ, गोपियों के साथ। प्रभु कहे हो हाय आगे कहो आर, राय कहे इहा वह बुद्धि गति नहीं आर। क्या प्रभु ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा ए हो हा आ बढ़िया बात कही, अच्छी बात कही। किंतु आगे कहो आर, आगे कहिए ना, और कुछ कहिए, शायद महाप्रभु ने सोचा कि अब राय रामानंद अपने वाणी को विराम देने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो विश्राम के लिए तैयार नहीं हूं। कहते जाइए, वयम तू न मित्रप्याम, जैसे वो शौनक आदि मुनि सुत गोस्वामी से कह रहे थे वयम तू न मित्रप्याम, हम तो वैसे प्रसन्न है भी आपकी कथा से और प्रसन्न है भी नहीं, हम और सुनना चाहते हैं। वयम तू न वित्रप्याम, अब तक प्रसन्न नहीं है, पूरी तृप्ति नहीं हुई है, हे प्रभु हे सुत गोस्वामी, स्वादु स्वादु पदे पदे, हम तो इसका आस्वादन करना चाहते हैं। कब कब? हर दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में, हो गया ना, नित्यम हो गया, नित्यम भागवत सेवया। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो क्या कह रहे, स्वादु स्वादु पदे पदे, पग पग पर, मतलब जब जब हम लोग पग से चलते हैं, पग को उठाते हैं, दाहिना बाया लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ते हैं, या कभी पीछे मुड़ते हैं, जिस स्थिति में जहां भी है, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ऐसे कथा के रस का आस्वादन करने वाले तो कई है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण तो साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निरंतर या तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन करते, साथ में नृत्य भी करते, प्राय दिन में ये उनका ये कार्यकलाप कीर्तन में रंगते, और फिर रात्रि के समय राय रामानंद आदि भक्तों के संग में वे भगवान के लीला कथा का श्रवण किया करते थे। तो दिन में श्रवण, रात्रि में श्रवण, प्रातः काल में श्रवण, सायंकाल में श्रवण, श्रवण कीर्तन ही उनका जीवन। ऐसा रस का पान किए कराए और इस प्रकार का आदर्श संस्कार हम सभी के समक्ष रखे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वे कह रहे आगे कहो आर, और भी तो कहिए ना। राय कहे यह वह बुद्धि गति नहीं आर, बस अब इसके आगे हमारी बुद्धि जा नहीं सकती। जितना संभव था, यथाशक्ति यथा संभव हमने कहा, अब सीमा हो गई हमारी। किंतु उनको वैसे ऐसे कहते कहते सीमा हो गई, एक बात का स्मरण आया और वो कहते हैं जेब प्रेम विलास विवर्त एक होय तहा सुनी तुमार सुख होय कि ना होय। हा हा, एक बात स्मरण आ रही है, एक विषय, उसका नाम है प्रेम विलास विवर्त। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं इस प्रेम विलास विवर्त की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं आपको होगा उसमें सुख होगा कि न हो कि नहीं सुख होगा, ये मैं नहीं कह सकता। ऐसा कह के वैसे राय रामानंद प्रेम विलास विवर्त की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एत बलि आपन कृत गीत एक गाइल प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आच्छादिल। तो अपनी ही रचना, मतलब राय रामानंद ने ही जिसकी रचना की हुई थी, ऐसी रचना को, इस प्रेम विलास विवर्त को एक गीत गाया, गाना प्रारंभ किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने झट से स्वहस्ते तार मुख अच्छा दिला, उनके उनका मुख बस आगे नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, ऐसी कौन सी बात है नहीं कहने की, इसके संबंध का क्या नियम है, इसकी चर्चा तात्पर्य में है। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कौन कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रस की अनुभूति तभी हो सकती है जब मनुष्य तमोगुण से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हो। आध्यात्मिक रस, और उन आध्यात्मिक रसों में भी कौन सा रस, सर्वोत्तम परम उज्जवल रस, और वो है श्रृंगार रस या माधुर्य रस। इसकी अनुभूति मनुष्य जब तमोगुण से ऊपर, या केवल तमोगुण से ही और रजगुण तक पहुंच गया, तो समझ में आएगा ठीक है, सत्वगुण तक उसको पहुंचा दिया, समझ में आएगा। गुणातीत जब व्यक्ति बनेगा उसको समझ सकता है। यह पद विशुद्ध सत्व कहलाता है, वो दिव्य पद या वो गुणातीत अवस्था स्थिति का नाम क्या है, शुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, बहुत अच्छी संस्कृत भाषा में व्याख्या यह कही है, जो कभी सुनाना चाहेंगे ये वसुदेव सत्व क्या होता है, विशुद्ध सत्व क्या होता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध सत्व भौतिक जगत के क्षेत्र से परे है और इसकी अनुभूति न तो शारीरिक इंद्रियों द्वारा हो पाती है न मानसिक चिंतन द्वारा। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के साथ हमारी पहचान आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न होती है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के परे का साम्राज्य है, स्थिति है, ज्ञान है, क्योंकि बुद्धि तथा मन भौतिक है, अतएव श्री राधा कृष्ण का प्रेम उनकी अनुभूति से परे है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचिंत्य है कहते हैं, अचिंत्य। किंतु अगर भगवान बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि योगम। फिर आप कहोगे फिर हमारा यहां आना ये सब सुनना तो बेकार है, जो प्रामाणिक है ईमानदार, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे कोई नर नारी कह सकते हो, फिर तो हमारे कार्यकलाप हमारे स्थिति कहां है, हम सब शुद्ध सत्व पहुंच गए, कहां है स्थिति हमारी, किस गुण के बंधन में हम है, तमगुण है, कलौ शूद्र संभव, उसी स्टॉक में से हम भी है। इस कलयुग में कैसे मनुष्यों का स्टॉक है या गोडाउन या भंडार है, कलेर दोष निधि राजन, कलि युग है और कलयुग में है शूद्र संभव, और शूद्र मतलब तमोगुण से जो भरपूर है, या कुछ रजगुण है या किंचित थोड़ा सा गंध सत्वगुण का हो सकता है, ऐसे ही समाज में से हम अभी अभी बाहर निकलने का प्रयास ही हो रहा है, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हम तो गुणातीत नहीं है, तो भी इस संवाद को और राधा कृष्ण प्रेम के व्यापार को समझने का प्रयास हम भी तो यहां कर रहे, तो फिर कैसे समझ पाएंगे, जैसे भी साधना करेंगे, जितनी साधना करेंगे उतनी मात्रा में हम लोग शुद्ध होंगे, उतनी मात्रा में गुणातीत होंगे, उतनी मात्रा में इस ऐसे विषय के श्रवण के अधिकारी बनेंगे, उससे अधिक शुद्ध होंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो क्या करते हैं सतत भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, अपने अपने घरों में बना, हरे कृष्ण, अपने अपने घरों में बनाओ भोग और ठाकुर को खिलाओ, ठाकुर खाएंगे। घर एक क्या है, सिनेमा घर, सिनेमा को मारो गोली, हम भी ऐसे घर में गए थे जहां सिनेमा चल रहा था या चलता था, तो फिर हमने थोड़ा कुछ बात छेड़ी कि ये टेलीविजन देखना ठीक नहीं है, इसमें केवल काम और क्रोध सेक्स और वॉयलेंस ही विषय होता है, हमने ये भी कहा कि ये जो टेलीविजन ये तो इडियट बॉक्स, जो सारे संसार को इडियट इडियट कई का हम कहते हैं महामूरख बना रहा है, इडियट टेलीविजन, ऐसे ऐसे थोड़ा भाषण दिया था नागपुर में किसी, क्या कहा जाए, भक्त के घर में फिर कितने उच्च कोटि का भक्त आप कल्पना कर सकते, लेकिन हुई ऐसी बात कि पुनः जब हम सत्संग के लिए गए उसी भवन में, तो जहां पहले वो इडियट बॉक्स बैठा था टेलीविजन, उस स्थान पर हमने राधा कृष्ण का दर्शन किया, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि वैसे ये जो दूरदर्शन है ये तो बंबई का दर्शन है, तो ज्यादा दूर नहीं है, कैलकाटा न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो को ज्यादा दूर नहीं है, सबसे अधिक दूर तो गोलोक है, गोलोक एव निवसती, कर ही हमने पढ़ा गोलोक में निवास करते हैं केवल कृष्ण ही नहीं, उनके साथ कौन है, राधा भी है। तो हमने कहा था कि आप या राधा कृष्ण का दर्शन मतलब ही क्या है, केवल दूर का ही नहीं, अति दूर का दर्शन, राधा कृष्ण दर्शन। तो उनके समझ में यह बात आई और अगले सत्संग के समय तक उन्होंने इडियट बॉक्स को बाहर भगाया, ठुकरा दिया और स्थान पर राधा कृष्ण की स्थापना की। गौर हरि। तो इस प्रकार हम अपने अपने घरों में साधना भक्ति कर सकते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, प्रीतिपूर्वक भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रीति उत्पन्न होगी, जगेगी, जागृत होगी। प्रीति तो अंदर है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। श्रवण करेंगे तो हमारी हमारा प्रेम, कृष्ण प्रेम जागृत होगा, अधिक प्रकट होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो न, यानी कि ये कृष्ण प्रेम हमारे पास है नहीं, ये कहीं बाजार से किसको कहीं किसी मॉल से खरीदना है, नहीं नहीं, प्रेम तो हमारा स्वभाव है। हम प्रेम की एक छोटी मूर्ति है, प्रेम के ही बने हुए हैं हम, कृष्ण प्रेम। कि मायावी कई सारे आचार विचारों के कारण हम बने हैं अब दूषित, कलुषित कलमशों के कारण। जब श्रवण कीर्तन होगा उसी से क्या होगा, दर्पण मार्जनम, स्वच्छ होगा हमारा दर्पण। चेतना का दर्पण जब स्वच्छ होगा तो हम अपने को भी और भगवान को, राधा कृष्ण को और उनके प्रेम के व्यापारों को भी समझना प्रारंभ करेंगे। और हमारा कैसे प्रेम है सदैव उस भगवान के साथ, इस बात को भी हम लोग भली भांति जानेंगे, समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ये प्रेम जागृत होगा श्रवण कीर्तन से, साधना भक्ति से, सदाचार से, हरि नाम से, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से। घर बैठे बैठे हम लोग शुद्ध होंगे तो फिर सुनो, और फिर भगवान ने वैसे वचन दिया है, जो ऐसे मेरी सतत भक्ति करेगा और प्रीति पूर्वकम भक्ति करेगा। दो दो लक्षण बताए भगवान ने भक्ति के, या दो शर्तें बताई भक्तों के लिए, साधकों के लिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक तो सतत होनी, सतत होनी चाहिए, उसमें सातत्य होना चाहिए। सतत सतत सतत, जब हम लोग सतत भी कहते हैं, कैसा है शब्द ये, इसके बीच में कुछ है, कोई खंड है? सतत 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 सतत, इसमें कोई, कितना सातत्य है इस सतत कहने में, कोई खंड नहीं है। तो सतत, जो सतत भक्ति करेंगे, और कैसी भक्ति? प्रीति पूर्वकम, प्रेम चाहते हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। विदुर के घर में हम लोग कहते हैं कि वो साग खाए, साग थोड़े ही खाया, उन्होंने क्या खाया वहां? प्रेम का स्वादन कर रहे थे। कहते कि शबरी ने बेर खिलाए, बेर थोड़े ही खाते हैं भगवान, क्या खा रहे थे? प्रेम खा, प्रेम कहा कितने, और वो भी शबरी का महा महा प्रसाद। शबरी उस बेर को महाप्रसाद बना के स्वयं थोड़ा आस्वादन करके, उसके पीछे भी उसका प्रेम था भगवान, वात्सल्य प्रेम। मेरा ये श्री राम प्रभु जब खाएंगे तो उसमें, क्योंकि वन में कुछ खट्टे बेर भी मिलते हैं, ये कभी तोड़ के देखें कुछ कीड़ा भी होता है, तो ऐसे बेर नहीं खिलाऊंगी। बड़ी सावधानी से वो भक्ति कर रही है, बड़े सावधानी पूर्वक खिला रही है भगवान को प्रेम के साथ। तो सतत भक्ति और प्रीति पूर्वक भक्ति है तो फिर भगवान क्या करेंगे हमारे लिए? तधामी बुद्धि योगम, ऐसे व्यक्ति को अहम ददामी, मैं दूंगा। क्या? अहम ददामी बुद्धि, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि दूंगा। नहीं तो बुद्धू है वो, बुद्धि बुद्धू का वो बुद्धिमान बनेगा तब जब भगवान से बुद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि तो प्राप्त होती है। या वैसी सलाह देने वाले तो कई है हमारी मति को भ्रमित करने वाले, कई पार्टी कई एजेंट्स तो बैठे हुए उसमें। टेलीविजन एक बहुत बड़ा एजेंट है। तो ऐसी बुद्धि जब प्राप्त होगी तो फिर हम लोग समझ पाएंगे ये विषय है, राधा कृष्ण का प्रेम का जो विषय है उसको समझेंगे उसी के साथ। वैसे प्रेम को तब समझेंगे या उतनी मात्रा में समझेंगे जितनी मात्रा में हम लोग काम से मुक्त है। भगवान के प्रेम को इसीलिए नहीं समझते क्योंकि हम लोग काम से लिप्त है। बस अब 10% मुक्त हो गए, 10% मुक्त हो गए काम से, राधा कृष्ण का प्रेम कितना कितने प्रतिशत समझ में आएगा? 10%। ठीक है, आप और तरक्की किए 50% तक पहुंच गए, मुक्त हो गए आप 50% काम से, तो राधा कृष्ण का प्रेम कितना समझ में आएगा? उतना 50%। इस प्रकार, क्योंकि ये काम वासना ये हमारे काम से प्रेरित या काम से वशीभूत होके जो हमारे कार्यकलाप होते हैं, ये सारे बंधन के कारण है। और हम वैसे भगवान के साथ एक हमारी कंपटीशन चलती रहती है, भगवान के है वैसे प्रेम के व्यापार, उसी की नकल हम करना चाहते हैं। ईश्वरो अहम जो है, हम कैसे हैं, मैं कौन हूं? ईश्वर हूं। अहम भोक्ता, अहम सुखी, अहम बलवान, ये सब विचार जो आसुरी संपदा के विचार है, इसी के साथ हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम में या उस प्रेम के व्यापार को देख के या सुन के प्रसन्न होने के बजाय हम उनके साथ ईर्ष्या करते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं, envious as we are, भगवान से नफरत करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और वो वे ही क्यों, मैं भी ऐसे खेल खेल सकता हूं, मेरा भी ऐसा व्यापार या संबंध संभव है। और इसी के साथ वो काम वासना में लिप्त होता है। तो ऐसी स्पर्धा जब बंद होगी, घटेगी और अंत में जब मिटेगी, तो उसी के साथ जीवात्मा राधा कृष्ण के प्रेम को लीला को समझ सकता है, शुद्ध होगा, भव रोग या काम रोग से जैसे मुक्त होगा, तो उसका जो स्वाभाविक जीवन है, शाश्वत जीवन है, उस जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही हो, तुमार प्रसाद इहा जानी लू निश्चय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे कह रहे हैं राय रामानंद जी से, हा हा साध्य वस्तु की यही तो अवधि या यही तो सीमा है, तुम्हार प्रसाद इहा जानी लू निश्चय, और आपके ही कृपा प्रसाद का ये फल है कि मैं साध्य वस्तु को कुछ समझ पा रहा हूं। साध्य वस्तु साधन बिनु केह नहीं पाए, कृपा करी कह राय पाबार उपाय। हाँ हाँ, आपने साध्य साधन ये आपने समझाया, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? कृपा करी कहो, कृपा करके कहिए कि इस प्राप्ति का साधन कौन सा है, कैसे हम इस साध्य वस्तु या साधन और साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। राय कहे यही कहाओ सही कही वाणी, की कही ये भल मंद किचु ही ना जाने। हम देखते ही आए हैं पिछले 5-6 दिनों से राय रामानंद कुछ कहते हैं और कहते कि नहीं नहीं अब तो मेरे साक्षात्कार या कथन की वचनों की कुछ सीमा ही होगी और तो नहीं कह सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रेरित, नहीं नहीं और कहो और कहो, तो ये कैसे संभव होता है? राय रामानंद कह रहे हैं जई कहाओ सही कही वाणी, आप जैसे भी कहलाओगे वैसे ही मैं कहूंगा सही, फिर क्या? के कही भल मंद किचु ई ना जानी, भल मंद ये सही है ये गलत है इसको कौन जान, मैं तो नहीं जानता हूं। तो फिर जब रामानंद राय कहते मेरी तो सीमा हो गई, तो रामानंद राय की चैतन्य महाप्रभु बैटरी और थोड़ी चार्ज करते हैं। ददामी क्या करते होंगे, ददामी बुद्धि योगम, उनको भी करते हैं, उनको बुद्धि देते हैं, उनके हृदय प्रांगण में सारे विचार दिमाग में डाल देते हैं ताकि वे कह सकते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, वो बात नहीं, अहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर ज्ञानम और अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति है या विस्मृति है, कृष्ण को कोई स्मरण कर रहा है वो भी भगवान के कारण, या कोई कृष्ण को भूल चुका है उसके कारण भी कौन है, भगवान ही है। तो भगवान का स्मरण भगवान का विस्मरण, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये सब भगवान से आता है। कोई कहता कि भगवान नहीं है भगवान नहीं है, ये कैसे वो कह रहा है? ऐसी बुद्धि भी ऐसे विचार भी भगवान ही देते हैं, या उसको कई कुछ बढ़िया बढ़िया आइडिया देते हैं, कई तर्क वितर्क से उसको युक्त करते हैं ताकि वो क्या करेगा, भगवान को भूल सकता है, क्योंकि भूलना चाहता है वो व्यक्ति, भगवान को भूलना चाहते, तो भगवान वैसी ही व्यवस्था करते हैं, वो स्वयं व्यक्ति व्यवस्था नहीं कर सकता। ठीक है भगवान नहीं, उसने कह तो दिया, लेकिन खतरी होनी चाहिए ना, कई 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 कोई विचार होने चाहिए, कोई तर्क वितर्क भी तो होना चाहिए, तभी तो व्यक्ति घोषित करे भगवान नहीं है, बेकार की बात है, किसने देखा है, बड़ा खंडन मंडन चलता रहता है। तो ये कहां से आता है, ये भी कहां से आता है, भगवान से। ऐसी व्यवस्था भी संसार में भगवान ने करके रखी है। तो ये कहते कहते उनको स्मरण अब आ ही रहा है। एक व्यक्ति पाटिल गया, पाटिल गए पटेल के यहां, प्रातःकाल का समय होगा, मिलने के लिए गए। दरवाजा जब खटखटाया या जब बेल बजती है, जय श्री राम। हम कहा थे अमरावती में थे तो हमने बेल बजाई तो आवाज आ, जय श्री राम। हम थोड़े डर गए, क्या हुआ क्या, कोई हनुमान तो नहीं पधारे। तो अंदर जब गए तो हमको इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि वहां बेल ही आवाज कैसी देती थी, जय श्री राम। बढ़िया आइडिया है, जय श्री राम कहने वाली बेल। तो वैसे ये जय श्री राम की आवाज हुई